पूछे और मैं प्रयास करूँगा। यथाश्रुत यथाशक्ति उत्तर देना। नहीं आप बोल सकते, लिखने का जरूरत नहीं है, कॉर्डलेस माइक ही है। और यदि आपको शर्म है कहना तो नोट लिखिए। नहीं तो हम और भी कीर्तन करें। हाँ एक भक्त,
हाँ
वो तो स्वीकार नहीं किया। हरी ऐसे भी समझ सकते, ये वैकरणिक विचार है। वैदिक सिद्धांत का निष्कर्ष करने में संस्कृत व्याकरण का ज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ही है। विशेषकर वो सब शास्त्र का विचार में इस शब्द इस प्रसंग में इसका अर्थ क्या है, तो इस प्रकार शास्त्र विचार में तो संस्कृत व्याकरण और प्रयोग जरूरी ही है। यदि हम वैदिक प्रणाली के अनुसार शास्त्र विचार करना चाहते हैं तो संस्कृत ज्ञान होने चाहिए, तो वो एक मत है और गौरव सिद्धांत है कि हरे कृष्णा इसका हरे का अर्थ है हरा संबोधन करना, हे हरा इस प्रकार, हे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरा, तो यदि हरा स्त्रीलिंग संबोधित होते तो हरे कैसे राधे राधा नाम यदि हम संबोधन पुकारते हैं राधे ऐसे होते। तो हम क्या करेंगे यदि वो स्वीकार नहीं करते, उनका दुर्भाग्य ही है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न, तर्क वैदिक संस्कृति में तर्क शब्द का अर्थ है शास्त्र लेके अलग अलग विचार करना, लेकिन तर्क से कोई स्थायी सिद्धांत प्रतिष्ठ नहीं है। तर्क पंथ में एक व्यक्ति अपना मत स्थापित करते, फिर दूसरे व्यक्ति आते उसको खंडन करते, और इस प्रकार तर्क वितर्क होते। तो ये वाद प्रतिवाद संस्कृति बहुत दिन से आ रहे हैं। जैसे शंकराचार्य ने पूर्व मीमांसक काम मीमांसक का सिद्धांत खंडन की, पूर्व मीमांसक की मीमांसा लेके ही उसको खंडन किया है, और मायावाद अद्वैतवाद, मायावादी तो स्वयं को मायावादी नहीं बोलते, अद्वैतवाद स्थापन किए हैं, और वो अद्वैतवाद रामानुजाचार्य उसको खंडन, केवल अद्वैतवाद से विशिष्ट अद्वैतवाद स्थापन किए हैं, और वो अद्वैतवाद खंडन का खंडन शंकराचार्य के उस समय कहीं फिरी के पश्चात वो विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत से केवल अद्वैत का खंडन था, फिर वो केवल अद्वैत वादियों वो विशिष्ट अद्वैत का खंडन किया, फिर मध्वाचार्य है और दोनों का खंडन किया, द्वैत केवल अद्वैत ना ही विशिष्ट अद्वैत ना ही द्वैत द्वैतवाद स्थापित किया, और इस प्रकार द्वैत अद्वैत शुद्ध अद्वैत शुद्धाद्वैत, तो इस प्रकार तर्क पंथा से कुछ प्रतिष्ठित नहीं होते। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण श्लोक है चैतन्य चंद्रोदय नाटक में है, जिसका उल्लेख है चैतन्य चरितामृत में, जिसके वो जो मैं कंठस्थ नहीं किया था, और हेलो 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 उदित लंबा श्लोक ही है, इसका अर्थ है उसमें वो महत्वपूर्ण शब्द आता है अमंद दया दया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये वाद विवाद प्रतिवाद जो तर्क पंथ से आते हैं वो सब तर्क पंथियों को शांत करते हैं चैतन्य महाप्रभु इनकी कृपा से, तो इनकी कृपा से सब अलग अलग वादियां तो अपनी स्थिति जीवेशु रूप हो कृष्णदास इस स्थिति में आते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की दया से, नहीं तो तर्क वितर्क से कोई पक्का सिद्धांत निष्कर्ष करना संभव नहीं है, तो एक सिद्धांत स्थापित होते ही तो वे दूसरे व्यक्ति आते हैं और उसको खंडन करते हैं, नया सिद्धांत स्थापित कर, चैतन्य प्रभु महाप्रभु भी वैसे किए हैं, युवा काल में ओ निमाय पंडित, उनका नाम निमाय पंडित था, तो ऐसे तर्क वितर्क में इतने निपुण थे निमाय पंडित कि किसी दूसरा ब्राह्मण समय नवरिक धाम में नव न्याय पद्धति प्रचलित था, नवरिक धाम तो पांडित्य का एक महान केंद्र था, तो निमाय पंडित इस प्रकार किसी पंडित को पकड़ के रास्ते में और उसको कुछ बताया, तो कुछ प्रस्ताव किया था न्याय के अनुसार, तो मेरा प्रस्ताव खंडन करो ऐसे चुनौती के, और वो लोग यदि नहीं कर पाए तो निमाय पंडित स्वयं अपना प्रस्ताव को खंडन किया था, और उसके बाद जैसे खंडन किया था वो नया प्रस्ताव उसको भी खंडन किया था। तो इस प्रकार निमाय पंडित की प्रतिष्ठा बहुत बड़ा हो गया नवद्वीप धाम में, क्योंकि कोई पंडित इनके सामने नहीं आ सकते। लेकिन बाद में निमाय पंडित वो सब पंडित या तर्क वितर्क चढ़ के हराये नम कृष्ण यादवाय नम गोपाल गोविंद राम इस प्रकार नाम संकीर्तन में निमग्न हो गए हैं। वो सब पंडित छोड़ दिया। तो वैष्णव सिद्धांत स्थापन करने में उसमें भी पांडित्य होने चाहिए, और अलग अलग संप्रदाय में सिद्धांत के बारे में विवाद होते हैं, और एक संप्रदाय के अंदर में भी सिद्धांत में विवाद हो सकते हैं। जैसे वो श्री संप्रदाय में दो पक्ष है, आज दोपहर दो तमिल श्री वैष्णव यहाँ हमारा सत्संग में आए थे, तो एक का तिलक ऐसे तो वो तेंगल बड़ेगल श्री वैष्णव, और दूसरा का ऐसे था वो तेंगल ही है। तो आजकल तेंगल और बड़ेगल में वो जैसे पूर्व काल में सख्त विवाद था, तो ऐसे आज तो नहीं है, पहले बहुत बहुत बड़े विवाद अलग अलग सिद्धांतिक विषय पर 13 विषय है जिन। तो वो तो नहीं है आज, और निम्बाक संप्रदाय में भी दो पक्ष है, तो दोनों अलग अलग संप्रदाय जैसे है, और गौड़िया संप्रदाय में भी तो इसलिए हमें तस्मात् गुरुं प्रपद्ये च जिज्ञासु श्रेय उत्तम, गुरु के पास जाकर उत्तम श्रेय के बारे में पूछना चाहिए। तो हम अलग अलग साधु के पास जा सकते, परंतु एक बार यदि हम एक गुरु का सिद्धांत ग्रहण करते और इनके आश्रम में आते हैं, तो उस समय से हम इनका पंथ जो हमको बताते इनके शरण में रहना चाहिए, नहीं तो हम पागल जाएंगे। यदि हम पूरा विश्व में सब सिद्धांत तो सब का पूरा विचार करना चाहते हैं और उसके बाद हम एक मार्ग ग्रहण करेंगे, तो वो खोज तो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो पहले हमें अनुसंधान करना चाहिए। तो कैसे हम समझ सकते हैं तो कौन सा पंथ सही है, तो इसलिए हमें अंतर्यामी परमात्मा भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मैं नहीं जानता कौन सा मार्ग सही है। तो भगवान यदि हम भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे तो ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, हम ऐसे गुरु मिलेंगे हमारा योग्यता और अधिकार के अनुसार और रुचि के अनुसार भी। तो इस प्रकार कुछ लोग मायावादी गुरु मिलते, कुछ लोग वैष्णव गुरु मिलते, वैष्णव संप्रदाय में चार मुख्य विभाग, चार मुख्य संप्रदाय ही है। और ऐसा नहीं है कि रामानुज संप्रदाय जो कहते हैं वो गलत है, हम ऐसा तो नहीं बोलते, क्योंकि भगवान की सेवा होती है अलग अलग भाव से, और भाव के अनुसार सिद्धांत भी होते। रामानुज संप्रदाय में विष्णु पुराण ज्यादा महत्व देना है, हम जैसे श्रीमद् भागवत को ज्यादा महत्व देते तो रामानुज संप्रदाय में नहीं, विष्णु पुराण को। तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत में इतना सा अंतर नहीं है, तो सब लीला जो दोनों शास्त्रों में वर्णित है तो लगभग एक थोड़ा सा अंतर है डिटेल्स में, परंतु विष्णु पुराण में कि विष्णु ही भगवान की मूल रूप, नारायण भगवान का मूल रूप ही है, वो विचार ये है। और श्रीमद् भागवत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो दोनों मत सही है। ऐश्वर्य का दृष्टिकोण से विष्णु सर्वोत्तम ही है, और रस विचार से कृष्ण, और वास्तव में ऐश्वर्य का विचार से कृष्ण भी मुख्य ही है। वो वाद प्रतिवाद था पूरी धाम में, चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन है। तो कैसे श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर में वो तर्क था, तो कौन बड़ा है, लक्ष्मी और वैकुंठ या राधा और ब्रज, ये रुचि के अनुसार भी ऐसा विचार होते। और मध्वाचार्य का सिद्धांत विष्णु बड़ा है कृष्ण बड़ा है, वो विचार तो नहीं है। मध्वाचार्य का विचार है कि सब विष्णु रूप समान ही है, और किसी भेदाभेद करना तो अपराध ही है, तो ऐसा ही है। यदि हम सख्त शास्त्र के अनुसार, वेद शास्त्र के अनुसार सब कुछ समझना चाहते हैं तो हमें माध्व सिद्धांत को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वो सिद्धांत समझने के लिए गहरा संस्कृत ज्ञान और शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, और कि मध्वाचार्य स्वयं वायु हनुमान भीम वो भी ग्रहण करना चाहिए, जिसके बारे में मध्वाचार्य स्वयं प्रमाण देते हैं कि मैं वायु जीवोत्तम हूँ। मध्वाचार्य का प्रचार है कि विष्णु सर्वोत्तम और जीवोत्तम वायु ही है, और वो वायु मध्व ही है। तो रस विचार से चैतन्य महाप्रभु का प्रचार वो ही सर्वोत्तम ही है। रसो वाय सह भगवान रस ही है। तो ये सब बहुत गहरी चर्चा है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि ये अन्य वैष्णव संप्रदाय से ऐसे तर्क वितर्क करना उचित नहीं है, उनको सम्मान देना है, और कि वे वैष्णव है तो वो स्वीकार करना चाहिए। तो हमारा मुख्य चुनौती है मायावादी नास्तिक भौतिकतावादी लोग से। युद्ध का जो वैष्णव आया है सम्मानित रामानुज वैष्णव श्री वैष्णव हरे कृष्ण श्री वैष्णव संप्रदाय का मत में 108 दिव्य देश है, अधिकांश दक्षिण भारत में है और कुछ उत्तर भारत में भी है, जिसमें गोकुल है, मथुरा है, नैमिषारण्य, मुक्तिनाथ जो नेपाल में है, कुरुक्षेत्र है एक दिव्य देशम लगते नहीं। इस दिव्य देशम है कुरुक्षेत्र लगते नहीं। शायद हिंदी नहीं आता। Can look it up on the internet if you want. और 108 दिव्य देशम में दो है इस पृथ्वी के ऊपर, एक एक है कारण सागर और दूसरे परम पद अर्थात वैकुंठ, भू वैकुंठ भी है तमिलनाडु में, भू वैकुंठ। अधिकांश तमिलनाडु में और कर्नाटक में भी कुछ है, आंध्र प्रदेश, तिरुपति, तिरुमाला और कहीं जाएगा आंध्र प्रदेश। तो और क्या प्रश्न है?
मैंने अब तक राम नाम का जप किया है तो क्या आप राम नाम का जप छोड़ कर
नहीं छोड़ो मत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कीजिए। इस प्रकार राम नाम जप कीजिए, यही महामंत्र है। राम नाम तारक है, कृष्ण नाम पारक है, तो दोनों एक साथ इस महामंत्र में जप कीजिए। तारक का मतलब राम नाम जपने से हम भौतिक संसार से मुक्त हो सकते, और पारक का नाम का मतलब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त होते कृष्ण नाम सुनने से। तो राम नाम तारक है, इसलिए लोग वाराणसी जाते हैं, काशी धाम जाते हैं शरीर त्यागने के लिए। शिव की कृपा से काशी धाम में लोग मुक्त होते थे, परंतु विष्णु भगवान मुक्तिदाता है, शिव नहीं है, तो कैसे शिव की कृपा से काशी धाम में लोग जो शरीर त्यागते हैं तो मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार की जो लोग काशी धाम में शरीर त्याग करते हैं तो त्यागने का समय शिव इनके समीप आके इनके काम में राम नाम सुनाते और इस प्रकार वे मुक्त हो जाते। तो राम नाम छोड़ो मत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस प्रकार जप कीजिए।
यह यहाँ पर सेवा होना कैसे चाहिए? आपने बताया कि यहाँ पर राधा रानी की सेवा की जरूरत है, हम अभी कैसे सेवा कर सकते हैं राधा रानी और कृष्ण?
हम कैसे राधा रानी की सेवा कर सकते? तो बद्ध अवस्था में जब तक हम माया मोहित है तब तक हम नहीं कर सकेंगे। हम इस प्रकार कर सकेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान, हे भगवान की शक्ति, मुझे आपकी दिव्या सेवा में नियुक्त कीजिए। तो वो अंतरंग सेवा का अधिकार प्राप्त करना तो बहुत ही दुर्लभ ही है, उसलिए योग्यता होने चाहिए। तो इस प्रकार आप राधा की सेवा कीजिए। तो राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, रूपानो का जाने रा जीवन। तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा इस प्रकार कीजिए। पृथ्वी थे आचे जत नागर आदि ग्राम सब अत प्रचार हुई बे मोरना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु है तारो ए देश। तो गोपियां की सेवा एक सेवा है, तो दूसरों राधा की सेवा में लगाना, ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि हम सब जो बद्ध जीव है हम सब अवसर में लेंगे राधा कृष्ण की सेवा करना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य इस भगवद गीता और अनन्य पुस्तक का वितरण के बारे में पूछे कि तो हम आपकी ग्रंथों का वितरण करने से पतित जीवों को अवसर देते हैं कि वे राधा कृष्ण की सेवा कर सकेंगे। तो ये गोपियां की सेवा है, और श्रील प्रभुपाद स्वीकार किया। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है गोपी सेवा, गोपियां की सेवा, जो सेवा वे राधा कृष्ण के प्रति करते हैं। तो इस प्रकार आप राधा की सेवा कर सकते हैं। और जो भक्ति में पक्का होते हैं वे अवसर मिलते ब्रज धाम में राधा कृष्ण की सेवा कर, तो वो गुर्वाष्टक जो हम सुबह गाते हैं, संसार दावना ललित लोक इत्यादि, उसकी फलश्रुति में वो श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो इस गुर्वाष्टक के लेखक है इस आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो अभी याद है मुझे कि नहीं, श्री गौरवष्टक एतदुच्चै ब्रह्म मुहूर्ते पतति प्रयत्नात् तमेव वृंदावन नाथ साक्षात् सेवैव लभ्य। और दो शब्द है, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति श्री गौरवष्टक उच्चारण उच्चाय ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् श्री वृंदावन नाथ साक्षात सेवा लाभ करते हैं। तो वृंदावन नाथ की सेवा का मतलब राधा कृष्ण की सेवा। तो जो मंगल आरती जाते हैं गौरवष्टक गाते हैं तो विश्व चक्रवर्ती ठाकुर की कृपा से अवसर मिलते हैं। सूर्य चढ़ के वृंदावन नाथ की सेवा करना, सेवाए वलभ्य वृंदावन नाथ सेवा लभ्य। श्लोक है इस वेद व्यास में, श्री गौरवाष्टक तदुच्चय ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रयत्न तमेव वृंदावन नाथ साक्षात् सेवा लभ्य। नो, इट्स नॉट इन देयर, इट्स इन माय इसमें होगा। You found it? Huh? Yeah, lock it. Oh. Srimad Gauravashta, Srimad Gauravash, where is it? Srimad Gauravashtakam etad uche, you call it, uchai, I'm going to say. Brahme mahurte patati prayatnat, yes tena vrindavana natha sakshat, sevaiva labhya, Janushonta eva. Jo vyakti brahma mahurt ke shubh samay me shri guru ke prati gun gan yukt is prarthana ka uchcha swar se evam savdhani purvak gan karta hai उस मृत्यु के समय वृंदावन नाथ कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। और कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
सुपर सोनिक प्रेजेंटिंग एवरी मेजर, सो आर देयर एनी सुपर सोनिक ऑन बॉडी?
हिंदी हर एक परमाणु में परमात्मा अंतर्यामी उपस्थित है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत परमात्मा है हमारा शरीर के अंदर, ये परमात्मा एक ही है। वो भगवद गीता में वो श्लोक है, बाबा श्लोक 13th चैप्टर, सुपर सोल इज वन बट ही अपीयर्स एज मेनी, 13th चैप्टर। Oh, that's the sattva-gun vichar. Anyway, Paramatma ek hai, inke anek abhivyakti hai. Wo hi uttar hai. Oh, maybe it's that one. Ekatvena. Look, you can look that up. Vibhaktam eva cha. Vibhaktam eva cha stitam. Nay, that sattva-gun vichara, that sarva-bhute sarvabhuteshu yenaikam. Some of us should learn Bhagavad Gita properly, all these half shlokas. Ekadvena pritakdvena, that's bahudha vishvato mukham, that's different altogether. Anyway, yehi uta, saral utar hai. Paramatma eke, inke anek abhivyakti hai. That's all.
Is basic knowledge of Vaishnava philosophy enough, or we should go deep in order to progress in devotion? Kya Vaishnava darshan ke aadharbhut gyan paryapt hai, ya phir humko aur zyada gehrai se janna hoga bhakti na aage badhne ke liye?
Yadi hum purnataya samasta hai jivesvarup hoy Krishna, Krishna nitya das. To hamara gyan purna hi hai. Aur kuch samajhna ki avashyakta nahi hai. Lekin wo hi vachan samajhna ke liye to aur bhi gyan hona chahiye. To kyon hum Krishna ke das hai? Kyon hum Krishna ke das hote hue bhi is bhautik sansar mein Krishna ki vismriti karte hain? To ye vakya sabhi gyan ka saransh hai. Jive swarup hoy Krishna nitya das. Usko samajhne ke liye aur bhi शास्त्र ज्ञान होने चाहिए. विशेषकर जो प्रचार करते हैं उनके लिए शास्त्र ज्ञान होने चाहिए. तो प्रचार हम यदि हमारा पूरा विश्वास है कि कृष्ण भगवान ही है, हम उनके दास हैं, तो उसी विश्वास से हम प्रचार कर सकते. लेकिन जिनको हम प्रचार करते वे प्रश्न करेंगे, तो इसलिए शास्त्र ज्ञान होने चाहिए. एक तत्पर्य में शूल प्रभुपाद मंतव्य किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का शास्त्र ज्ञान होने चाहिए, नहीं तो प्रचार करने में वे निंदित होंगे कि तुम लोग आते. इसका मतलब है कि लोग हमको बताएंगे कि तुम लोग आते हैं और हमको ऐसे बोलते हैं, लेकिन तुम लोग तो कुछ नहीं जानते हो. तो इसलिए शास्त्र ज्ञान होने चाहिए. और शास्त्र ज्ञान तो विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों से हम मिलते हैं. और क्या
मंत्र जप करने और नाम जप करने दोनों में क्या अंतर है?
नाम जप, भगवान के बहुत नाम है और हम विशेषकर महामंत्र जप करते हैं. हम अलग अलग नाम कह सकते, राम, नृसिंह, वराह, कुर्मा, वामन, गोपीनाथ, व्रजनाथ इत्यादि. तो ये सब नाम ही है. तो इस पद्धति से शास्त्र के अनुसार हम जप करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. वो नाम जप ही है और मंत्र जप ही है, महामंत्र जप. और अलग अलग मंत्र भी हैं जो नाम जप तो नहीं है, जैसे एक कृष्ण नाम जप, विष्णु नाम जप नहीं है, जैसे एक प्रसिद्ध जप है मृत्युंजय जप, वो मंत्र का जप, जिससे हम मृत्यु से मुक्त होंगे, वो ही आशा है।
क्या कृष्ण किसी ऐसे व्यक्ति की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते जो देहात्म बुद्धि में हो?
I didn't understand. Koi Krishna jaisa?
Does Krishna not accept anything from anyone who is in material dehatma buddhi?
Krishna Bhagavan kehte hai patrang pushpang phalang to yam yome bhaktya prayachati tadaham bhakti paritam shnami prayatam. Bhakti bhavana se bhaktong jo कृष्ण भगवान को फल फल जल पत्र अर्पण करते, वो अर्पण कृष्ण भगवान ग्रहण करते, और अभक्तों का अर्पित वस्तुओं भगवान ग्रहण नहीं करते। वो प्रसिद्ध है महाभारत में कि दुर्योधन कृष्ण भगवान का आमंत्रण किए और कृष्ण भगवान तो वो आमंत्रण ग्रहण नहीं किए, और विदुरानी कृष्ण को केला का छिलका के दिया है और कृष्ण भगवान वो तो ग्रहण किया है। भगवान इनके भक्तों की भक्ति अलग अलग अर्पण के द्वारा ग्रहण करते, भगवान का कोई अभाव नहीं है, भगवान में कोई अभाव नहीं है। हाँ,
कीर्तन क्या है? संकीर्तन और कीर्तन में क्या अंतर है? अकेले का संकीर्तन,
कीर्तन का मतलब कीर्तन गाना, कीर्ति गाना, और कीर्तन और संकीर्तन दोनों में यही अंतर तो नहीं है। संकीर्तन है एक प्रकार का कीर्तन, बहुबे मिलद्वा याद कीर्तनम इति संकीर्तनम। तो बहुत लोग समवेत होकर वो कीर्तन जो वे करते उसको संकीर्तन, संग में वो कीर्तन जो है उसको संकीर्तन बोलते हैं। और संकीर्तन शब्द का दूसरा अर्थ है सम्यक कीर्तन, अर्थात पूर्ण कीर्तन। तो शुद्ध भक्तों उनका कीर्तन वो ही संकीर्तन भक्त।
भगवान को प्रेयर करने से पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए।
भगवान के प्रयत्न
प्रेयर करने से पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए।
स्तुति भी प्रेयर है, प्रार्थना है, स्तुति है। वो प्रार्थना करने करने की रीति है। तो पहले भगवान की स्तुति करना और उसके बाद प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब याचना। भगवान की स्तुति कैसे करे? तो सबसे अच्छा है वो स्तुतियां जो शास्त्र में है, वो स्तुतियां का पाठ करना। क्योंकि शास्त्र में है जो है वो पूरा सिद्धांत के अनुसार ही है, और इसलिए हमें शास्त्र में वो सब जो पूर्व महान वैष्णव स्तुति भगवान को अर्पण किया है, तो उनके वचन में यदि हम भगवान की स्तुति करेंगे तो वो स्तुति पूर्ण होगी। तो बहुत बहुत स्तुति है शास्त्र में, जैसे भगवद गीता में विश्वरूप दर्शन करके अर्जुन भगवान की स्तुति की, और श्रीमद् भागवत में बहुत है कुंती रानी की स्तुति और दक्ष प्रजापति और इस प्रकार बहुत है और शुद्ध भक्तों की हृदय प्रेरणा से बहुत स्तुति भी उद्भूत है। जैसे वो हम रामानुज संप्रदाय के बारे में कहते हैं तो यमुनाचार्य का स्तोत्र रत्न ही है, वो भी स्तुति। स्तुति का मतलब भगवान की प्रशंसा करना और प्रार्थना याचना, हे भगवान मुझे यही कृपा दीजिए।
हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है हमारी इंद्रियों की वजह से आता है, कैसे
इसको कैसे समझें? कैसे आते हैं वो सुख
दुख हमारी इंद्रियों की वजह से आता है वो हम कैसे समझें?
कैसे समझाए तो अनुभूति होती है ना। यदि आप नहीं समझते तो एक हथौड़ी ले लो और आपका सिर पर हम लगेंगे, फिर आप समझ इस प्रकार हम आपको समझेंगे कैसे दुख होते हैं इंद्रियों के द्वारा।
मंजरी किसे कहते हैं?
मंजरी तो एक वनस्पति में अंकुर है, वो फूल का मंजरी है ने? जैसे तुलसी मंजरी वही मंजरी है। और गौरिया वैष्णव संस्कृति में मंजरी है एक छोटी गोपी और क्या।
Just because it is hidden somewhere that we are souls and not matter, how can we accept this without direct perception or any realization?
क्योंकि वो हिंदी में कहता है।
मात्र क्योंकि ये लिखा है कि हम आत्मा हैं और शरीर और भौतिक पदार्थ हैं, लेकिन इससे हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं कोई अनुभूति या साक्षात्कार के बिना?
तो जो प्रत्यक्ष इंद्रिय की अनुभूति के परे हैं वो सब तथ्य हम प्रमाणिक स्रोत से ग्रहण करने चाहिए। जैसे सब यहाँ पर विश्वास करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे चीज तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई अविश्वास करते सब विश्वास करते तो कैसे प्रत्यक्ष से कोई किसी इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं? तो आप विश्वास करते क्योंकि आप आधुनिक साइंटिस्ट का वचन स्वीकार करते। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चीज है कि नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति है कि नहीं? तो आपका अंगूल प्लग में लगाए तो फिर शॉक लगेंगे, लेकिन वो कैसे शॉक आते है? तो वो इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, आप विश्वास करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी है? अचिंत्य खलु ये भावनतांस्तर्केन योजयत् प्रकृतेभ्यो परं यच्छत् तद् अचिंत्यस्य लक्षणम्। बहुत कुछ है जो हमारा साधारण चिंतन के अतीत है, हम बहुत तुच्छ सामान्य प्राणी है, इस छोटा सा भूमि पर है, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, हमारे इंद्रियों बहुत सीमित है, तो इस प्रस्ताव की हम केवल जो इंद्रियों में से देख सकते, स्पर्श कर सकते, ग्रहण करते हैं, वो कल हम ग्रहण करेंगे, यही प्रस्ताव तो पूरा मूर्ख ही है। तो आध्यात्मिक विषय के बारे में ज्ञान प्राप्ति होती है स्वतः प्रमाण वेद शास्त्रों से, तो जो ग्रहण नहीं करते तो ठीक है, आप जैसे आपका मत वैसे रहो, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति तो संभव नहीं होगा वेद प्रमाण ग्रहण करने के बिना। तो ये विश्वास होने चाहिए, और यही विश्वास बुद्धिमान विश्वासी है कि सूक्ष्म आत्मा ही है न, ये बहुत बड़ी चर्चा है, सूक्ष्म आत्मा ही है, नहीं तो यदि जीव नहीं हो तो कैसे जीवन ही है। तो इस प्रकार बुद्धि लगा के हम समझ सकते हैं कि जीव या आत्मा का अस्तित्व है, परंतु किसी इंस्ट्रूमेंट किसी मशीन से वो जीव का अस्तित्व माप कर, और हम नहीं देख सकते, जीव जो जीव शक्ति मापना किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से संभव नहीं है। इसलिए जिस शास्त्र में विचार है आत्मा के बारे में तो उसको ग्रहण करना चाहिए। दैट्स ऑल। यदि आपका पूरा विश्वास है प्रत्यक्ष में तो कुछ मत खाओ, क्योंकि प्रत्यक्ष से आपके समक्ष यदि एक थाल में चावल दाल करी इत्यादि है तो प्रत्यक्ष से आप नहीं समझ सकते उसमें पॉइजन है कि नहीं, तो मत खाओ, पहले टेस्टिंग करो। लेकिन टेस्टिंग करने में तो आपका विश्वास होना चाहिए वो सभी इंस्ट्रूमेंट में, तो पहले वो इंस्ट्रूमेंट का टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक पॉइंट होना चाहिए जिससे हमारा विश्वास ही है, यदि विश्वास नहीं हो कि इसमें पॉइजन है कि नहीं तो एक इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए केमिकल एनालिसिस करने के, लेकिन वो केमिकल एनालिसिस वो पद्धति में विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रस्ताव की हम खाली जो प्रत्यक्ष से हम जो देखते हैं उसमें खाली हमारा विश्वास होगा, ये मूर्खों की बात, और कोई प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं करते। यदि कोई पक्का प्रत्यक्षवादी है तो श्वास भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें भी पॉइजन हो सकते, तो वो मर जाएगा ऐसे, तो मर जाओ हमारा आशीर्वाद लेके। तो ये बात बोल के जा रहा हूँ। हरे कृष्ण।